ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। असहमति और पूर्वाग्रह न रखकर निर्धारित समय पर ही चुनाव संपन्न करने में भूमिका निभाने का राष्ट्रपति पौडेल ने किया आह्वान। नेपाली कांग्रेस ने भाद्र 23 और 24 के प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की जांच कर दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिए की उच्च स्तरीय छानबीन आयोग गठन की मांग। और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गजा में तुरंत और स्थायी युद्ध विराम के साथ ही बंधकों की रिहाई की मांग के प्रस्ताव पर लगाया वीटो। अब समाचार विस्तार से। 10वें संविधान दिवस के अवसर पर आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। संविधान सभा से विक्रम संवत 2072 साल आश्विन 3 गते संविधान जारी होने के स्मरण में आज देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस के अवसर पर आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में जलपान समारोह आयोजित किया गया। मौके पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने असहमति और पूर्वाग्रह न रखकर निर्धारित समय पर चुनाव संपन्न करने में भूमिका निभाने के लिए सभी पक्षों को लक्षित कर आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संसद से सरकार बनने की स्थिति न होने के कारण संकट से निकास देने के लिए आम सहमति के आधार पर संसद विघटन हुआ है। राष्ट्रपति ने इस तथ्य को मनन करते हुए नए चुनाव से प्रतिनिधि सभा लाने के मार्ग में जुटने का आह्वान किया। समारोह में उपराष्ट्रपति राम साहेब प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री सुशीला कर्की, प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रीय सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, पूर्व राष्ट्रपति गण रामवरण यादव और विद्या देवी भंडारी, पूर्व प्रधानमंत्री गण, वर्तमान मंत्रीगण एवं पूर्व मंत्रीगण, नेपाल स्थित विभिन्न कूटनैतिक नियोगों के प्रमुख एवं प्रतिनिधिगण, उच्च पदस्थ कर्मचारी लगायत सहभागी हुए। संविधान दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित समारोह को प्रधानमंत्री सुशीला कर्की ने संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि राज्य के सभी संयंत्रों में युवा अपनी उपस्थिति देखना चाहते हैं और इसी भावना के मुताबिक काम करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस बात पर बल देते हुए कि संविधान के अक्षरों के मुकाबले जनता की भावना श्रेष्ठ होती है, इसलिए कानून को संशोधित कर जनता को दी जाने वाली सेवाओं को प्रभावकारी बनाने को उन्होंने जरूरी बताया। उन्होंने साफ किया कि संविधान ने संघ, प्रदेश और स्थानीय तहों में अधिकारों का आवंटन कर जनता को स्तरीय और झंझट मुक्त सेवा प्रदान करने का आधार बेशक प्रदान किया है, लेकिन जनता की भावना और आवश्यकता के मुताबिक राज्य संयंत्र क्रियाशील न हो सकने के कारण युवा वर्ग आंदोलन में आने को बाध्य हुआ। जिन जेड आंदोलन के क्रम में विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों के पुनर्निर्माण और तय समय पर चुनाव संपन्न करने में सहयोग देने का समूची युवा पीढ़ी से प्रधानमंत्री कार्की ने आग्रह भी किया। समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रीय सभाध्यक्ष, सरकारी विशिष्ट पदाधिकारी, कूटनीतिक नियोगों के प्रमुख एवं प्रतिनिधि लगायत उपस्थित थे। नेपाली कांग्रेस ने भाद्र 23 और 24 गते जेन जेट के प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं की जांच कर दोषियों को कानूनी दायरे में लाने के लिए उच्च स्तरीय न्यायिक छानबीन आयोग गठन करने की मांग की है। आज केंद्रीय कार्यालय सानेपा में उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का की अध्यक्षता में कांग्रेस केंद्रीय सदस्यों और कार्य संपादन समिति के नेताओं के बीच हुए विचार विमर्श में छानबीन आयोग गठन की मांग करने का निर्णय हुआ। बैठक में जेन जेड के प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ एवं आगजनी के लिए आपराधिक समूहों को जिम्मेदार ठहराते हुए सच्चाई पता लगाकर दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिए आयोग गठन करने की मांग की। ये जानकारी कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा ने दी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि संविधान संशोधन और चुनाव के वातावरण निर्माण के लिए सबको मेहनत करनी होगी। संविधान दिवस के अवसर पर आज पार्टी मुख्यालय पेरिस टाटा में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने ये बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अब तय समय पर चुनाव करके जिनजेट आंदोलन की भावना के मुताबिक प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति का रास्ता संवैधानिक रूप में ही खुले, ये उनकी चाह है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G।
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई भौतिक पूर्वाधार और शहरी विकास मंत्रालय अंतर्गत लंबे समय से काम न होकर जीर्ण पड़ी विकास परियोजनाओं के ठेकों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। इन तीन मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री कुलवान घिसिंग ने तीनों ही मंत्रालयों के सचिवों व विभागीय प्रमुखों को जीर्ण परियोजनाओं की सूची जल्द से जल्द पेश करने का निर्देश किया है। तीन मंत्रालयों के काम कार्यवाही के बारे में संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि काम न करने वाले निर्माण व्यवसायियों की महज सूरत देखकर परियोजनाओं को असमंजस की स्थिति में नहीं रखा जा सकता। बागमती प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए लाए गए बजट का पुनरावलोकन करने जा रही है। हेटौडा में आज हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्तमान विषम परिस्थिति में बजट में दिख रही कमी और प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण बजट पुनरावलोकन के लिए अध्ययन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री प्रभात तामांग ने दी। पूर्व मुख्यमंत्री बहादुर सिंह लामा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए 67 अरब 47 करोड़ रूपये के बजट में त्रुटियों और दुर्भावना को इंगित करते हुए इसके बारे में अध्ययन करने के लिए नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के दो दो प्रतिनिधियों वाले एक कार्यदल का गठन कर अध्ययन किया गया था। इससे पहले कल शाम हेटौडा में हुई सर्वदलीय बैठक में भी खर्च में कटौती करने का निर्णय लिया गया था। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मंत्री कुलमान घिसिंग ने सिंह दरबार परिसर में निर्माणाधीन संघीय संसद भवन को किसी भी तरह आगामी पूस के भीतर पूरा करने की बात कही है। शहरी विकास मंत्रालय के सचिव गोपाल सिकदेल, विशेष भवन निर्माण परियोजना तथा समन्वय कार्यालय परियोजना के सलाहकारों और निर्माण व्यवसायियों के साथ आज भवन निर्माण पर चर्चा करते हुए उन्होंने पूस तक निर्माण पूरा करने के लिए काम तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। बता दें कि 3 वर्ष के भीतर संसद भवन का निर्माण पूरा करने के लिए वर्ष 2076 के आश्विन में ठेका समझौता हुआ था। 5वीं बार बढ़ाए गए ठेके की अवधि आगामी पूस में समाप्त हो रही है। अब तक परियोजना की भौतिक प्रगति 86% हुई है। गृह मंत्रालय ने जेन जेड पीढ़ी के प्रदर्शन के बाद विकसित घटनाक्रम और परिवर्तन के साथ समाज में हो सकने वाली उच्छृंखल गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सहायता कक्ष स्थापित किया है। आज मंत्रालय के सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्य ने आंदोलन के बाद की स्थिति में जनता की समस्या और सुझाव सुनने के लिए मंत्रालय ने सहायता कक्ष स्थापित की है। समाज में उच्छृंखल गतिविधि होने पर या कोई समस्या आने पर सूचना, शिकायत, सलाह और सुझाव देने के लिए मोबाइल नंबर 98513-60603 यानी 98513-60603 पर डायरेक्ट फोन, SMS करने या व्हाट्सएप, वाइबर का उपयोग कर जानकारी देने का आग्रह किया गया है। यूक्रेन की सीमा पर हिरासत में रहे 2 नेपाली नागरिकों को बचाया गया है। रोहतक के जयप्रकाश शाह और बागलुंग के संदेश केसी को जर्मनी के बर्लिन स्थित नेपाली दूतावास के समन्वय और सक्रियता से बचाया गया है और आज नेपाल वापस लाया जा रहा है। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी। यूक्रेन की सीमा सुरक्षा सेवा कार्यदल, गैर आवासीय नेपाली संघ जर्मनी आदि के सहयोग से उन्हें बचाया जा सका। ये बताते हुए कि संबंधित देश के कानून का उल्लंघन या अवज्ञा करने पर गिरफ्तार किए गए लोगों को बचाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, परराष्ट्र मंत्रालय ने प्रलोभन और बहकावे के बारे में सचेत रहने और इस तरह के कार्य में शामिल न होने का सभी से अनुरोध किया है। जनकपुर स्थित MG स्टील कारखाने में आज दोपहर हुई आग लगे से लगभग 4 करोड़ रूपये के सामान जलकर नष्ट हो गए हैं। लकड़ी और लोहे का फर्नीचर बनाने वाले इस कारखाने में आग लगने के दौरान उद्योग में तैयार फर्नीचर और फर्नीचर बनाने की सामग्री जलकर नष्ट हो गई। ये जानकारी जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व उपाध्यक्ष अंबू शाह ने दी। इस क्षेत्र के सबसे बड़े कारखाने में लगी इस आग पर 8 फायर ब्रिगेड के वाहनों, सुरक्षा निकायों और स्थानीय नागरिकों की सहायता से लगभग 3 घंटे के प्रयास के बाद नियंत्रण में लाया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गजा में तुरंत और स्थायी युद्ध विराम के साथ ही बंधकों की रिहाई की मांग की गई थी। ये छठी बार है जब अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगाया है। मध्य पूर्व के लिए अमेरिकी उपदूत मॉर्गन ऑर्टागस ने कहा कि प्रस्ताव का मसौदा हमास की पर्याप्त निंदा नहीं करता और न ही इसराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। सुरक्षा परिषद के अन्य सभी 14 सदस्य देशों ने इस मसौदे के पक्ष में वोट दिया। इसमें गजा में स्थिति को विनाशकारी बताया गया। इसमें इसराइल से सभी राहत प्रतिबंध हटाने की अपील की। अमेरिका ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे रहा है कि गजा सिटी में आखिरी लाइफलाइन भी टूट रही है क्योंकि इसराइल ने अपना सैन्य अभियान और तेज कर दिया है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गजा में इसराइली सैन्य अभियान में अब तक 65,141 लोग मारे जा चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। असहमति और पूर्वाग्रह न रखकर निर्धारित समय पर ही चुनाव संपन्न करने में भूमिका निभाने का राष्ट्रपति पौडेल ने किया आह्वान। नेपाली कांग्रेस ने भाद्र 23 और 24 के प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की जांच कर दोषियों को कानून के दायरे में लाने के लिए की उच्च स्तरीय छानबीन आयोग गठन की मांग। और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गजा में तुरंत और स्थायी युद्ध विराम के साथ ही बंधकों की रिहाई की मांग के प्रस्ताव पर लगाया वीटो। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।